जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्यामकुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन कालिंदी जमुना जय जय महावान राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे
सब लोग नहीं बोल रहे हैं
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंदा गोविंद राधे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
करो
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राधे हे राधे नामी राधे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे
श्री राधा कुंड श्याम कुंड धाम की श्री गिरी गोवर्धन की श्रील प्रभुपाद की वृंदावन धाम की यमुना मई की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे
राम हरे राम, राम राम हरे हरे। राधा कुंड के किनारे भगवान का नाम उच्चारण करने के लिए करने के वजह से हजारों लक्ष गुना लाभ होता है एक बार बोलने से। इसलिए एक और बार हृदय से पुकारो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
आप सब लोगों का श्री गिरिराज के क्षेत्र में स्वागत है। गिरिराज गोवर्धन की, गिरिराज गोवर्धन गिरिराज गोवर्धन स्वयं विष्णु स्वरूप है और पर्वत के रूप में यहाँ पर विराजमान है। ब्रज की शोभा है, ब्रज का एक अविभाज्य अंग है। श्री गिरिराज जी सेवक भगवान है, भगवान भी हैं और सेवक भी हैं। और जब भगवान ने गिरिराज को उठाया था, उसके पहले जब अन्नकूट हुआ था तो स्वयं कृष्ण गिरिराज हो गए थे, विशाल रूप धारण किया था उन्होंने श्री गिरिराज जी का, और सारे अन्नकूट को ग्रहण किया था। एक साथ बालक कृष्ण भी थे, एक साथ कृष्ण गोवर्धन पर्वत भी बने थे। बहुत अद्भुत लीला है, बहुत सुंदर। आप सब जानते हैं उसको, इंद्र ने कोप किया, किसी इनकी पूजा को भगवान ने रद्द कर दिया, क्योंकि इंद्र को थोड़ा घमंड हो गया था। भगवान ने जानबूझ के उनकी पूजा जो हर साल होती है उसको रद्द कर दिया और गोवर्धन की पूजा बनाई उसकी जगह पर। इंद्र को क्रोध हुआ, तो नटखट बालक के फूटपटांग बातों को सुनकर बड़े बड़े गुजरातियों ने हमारी पूजा रद्द कर दी और इस पत्थर की पूजा की, इसको सबक सिखाना जरूरी है। तो जो बादल प्रलय काल में जिनका उपयोग होता है सर्वनाश करने के लिए, उनको बिना समय, प्रलय का समय नहीं हुआ, बिना समय उनको बुला लेते हैं, जाओ सब ब्रज को नष्ट करो, सब ब्रजवासियों को, गऊओं को सब नष्ट कर दो, क्या समझते अपने आप को, इस नटखट बालक के कहने पर हमारी पूजा रद्द करते हैं। संवर्तक बादल भी प्रश्न में आ गए कि अरे महाराज जी ये तो पहले का समय नहीं हुआ, प्रश्न पूछने का काम नहीं है, तो बताया वो करो, जाओ गए बेचारे। तो संवर्तक बादल होते ना, वो पहले काल का वर्षा करते हैं, कहते हैं कि 1000 किलोमीटर तक पृथ्वी पर जल इकट्ठा होता है, इतनी वर्षा चारों तरफ पृथ्वी बोले ना, तो सब रेडियस 1000 किलोमीटर तक पानी जमा हो जाता है, सब जीव सृष्टि नष्ट हो जाती है, फिर भी उसको मिनी प्रलय कहते हैं। मिनी प्रलय पूरा प्रलय नहीं है, लोग वैसे रहते हैं। तो वो भनघोर वर्षा करने लगे तो हाथ पैर मच गया। मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूँ कि भगवान ने गिरिराज को उठा लिया, 7 दिन रात उठाया, 7 दिन साथ और चक्र को बुलाया, बताया कि एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरना चाहिए, सबको बाफ बना के भेज दो ऊपर, एवेपोरेट। तो चक्र जो है वो गोल गोल इतने स्पीड से घूमने लगे अपने पूर्ण ऊर्जा के साथ, इतनी वर्षा हुई 1 सेंटीमीटर पानी भी इकट्ठा नहीं हुआ। 1000 किलोमीटर तो दूर की बात है, इतना गिर रहा था वो सब बाष्प होकर वापस रिटर्न। 7 दिन 7 रात में ये लीला समाप्त क्यों हुई, क्योंकि 7 दिन के बाद में उनका टैंक खाली हो गया। अगर ज्यादा पानी होता तो और 700 दिन भी चलती, भगवान को कोई तकलीफ नहीं थी, खड़े आराम से सब लोग आनंद ले रहे हैं, साथ में बैठे हुए हैं, सब कुछ आनंद ले रहे साथ में, कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई सांस नहीं फूल रही है, कोई पसीने निकल नहीं रहे हैं, कोई सबको लग रहा है कि अभी हाथ टूट जाएगा, अभी इसका सपोर्ट दो उसको, फ्रैक्चर हो जाएगा, ऐसा कुछ टेंशन नहीं, आराम से खड़े। उल्टा जैसे ब्रह्मा जी ने बालकों को
उठाया तो हाहाकार की अपेक्षा कर रहे थे ना कि हाहाकार हो जाएगा पूरा ब्रज में, सबको मैं छीन के लेके गया। फिर वहां पर वो सेनाई बज रही है और शादी के मंगलाष्टक गाए जा रहे हैं, मंगल गीत गाए जा रहे हैं और पंगत पंगत लग रही है, भंडारा हो रहा है, तो जो सोच रहा है उसके उल्टा हो रहा है। इसी तरह से इतनी बड़ी भयंकर वर्षा हो रही है तो ब्रज भी बह सकता है, पूरा पृथ्वी बह सकती है, लेकिन आनंद ही आनंद है। सब प्रकार के भक्तों के साथ भगवान एक साथ विराजमान है, मैया लोग भी साथ में हैं, बाबा लोग भी साथ में हैं, दोस्त लोग भी साथ में हैं, सखियां भी साथ में हैं, गौवे भी साथ में हैं, बछड़े भी साथ में हैं, मोर भी है, जितने भी जीव हैं सब एक साथ में भगवान के साथ छोटी जगह पर आए हैं। अब भगवान ने गोवर्धन को विस्तारित कर दिया सबको सम्मिलित करने के लिए। और गोवर्धन की स्थिति देखो, गोवर्धन को उठाए रखा है भगवान ने और सारा आघात अभी गोवर्धन के ऊपर हो रहे हैं, है ना। लेकिन कहते हैं गोवर्धन को इतना आनंद आ रहा था, इतना आघात मुसलधार, मतलब मुसल के आकार का एक बिंदु, ऐसे कहते हैं मुसलधार, ऐसी वर्षा भी केवल गोवर्धन के ऊपर हो रही है, बाकी सबको सुरक्षित है। लेकिन भगवान के छोटे उंगली का अग्रभाग उनको स्पर्श कर रहा था, सारी आनंद की ऊर्जा उसमें से गोवर्धन को मिल रही थी, इसलिए गोवर्धन को जरा भी इतना भी कष्ट नहीं हुआ, उल्टा आनंद आ रहा था, बहुत बहुत मजा आ रहा था उनको। कहते इतनी घनघोर वर्षा हुई ना, लेकिन एक पौधे का एक कोमल पत्ता भी उखाड़ नहीं सका वो इंद्र का वर्षा। क्या उम्मीद है आपके, बड़े बड़े पेड़ गिरेंगे, सब धुआंधार हो जाएगा, जमीन दोस्त हो जाएगा, ऐसा सब उम्मीद था ना उससे। अरे छोटी सी वर्षा तो भी पेड़ गिर जाते। इंद्र की प्रलय काल की वर्षा होने के पश्चात भी गोवर्धन इतने विस्तार पूर्वक क्षेत्र है, उसके ऊपर का एक तिनका भी नहीं गिरा अपनी जगह से, और सबको अंदर से ऊर्जा मिल रही है ना अंगुली के अग्रभाग से। ये कृष्ण भगवान है, इंद्र के सबसे बड़ी शक्ति को कृष्ण ने अपने शरीर के सबसे कमजोर हिस्से से पराभव कर दिया। देखिए, द हाईएस्ट पावर ऑफ इंद्र इज डिफीटेड बाय द वीकेस्ट पावर ऑफ कृष्णस बॉडी, इट इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग, नॉट दैट वीकेस्ट, मतलब उनके शरीर में भी, आपके शरीर में भी ये सबसे ज्यादा वीकेस्ट है ना, राइट हैंड भी आपका एक्टिव है तो इसमें थोड़ा ताकत होती है, शरीर पकड़ सकते हैं, तो पकड़ के देखो थोड़ा कष्ट होगा। तो भगवान ने साबित, तभी इंद्र को ना ध्यान में आ रहे, मेरे समर्थक बादलों की शक्ति को लीलया परास्त करने वाला कौन हो सकता है, ओनली श्री कृष्ण कहें, मेरे भगवान हो सकते हैं जिन्होंने मुझे इंद्र बनाया है, और मैं उसी को नटखट बालक समझकर दंड देने का प्रयास कर रहा हूँ। ओ बाप रे, डर लगा उनको, मैंने क्या किया, बाप के नीचे आए, भगवान ने देखा भी नहीं, उधर से आए उधर भी देखा नहीं, समझ गए कि अभी मामला गड़बड़ है। तो बृहस्पति के पास गए, बृहस्पति ने उनको बहुत गाली दिया, मूर्ख हो तुम, देवेंद्र है ना वो बड़ा आदमी, गलती करेगा तो प्राइवेटली जाके एक्सप्लेन करेगा ना, कोई सॉरी सबके सामने भी करेगा, गुरु के सामने जाके उन्होंने बहुत डांटा उनको, ब्रह्मा जी ने भी डांटा उनको बहुत। तो ठीक है, अभी गलती होगी, बताओ क्या करूं, क्या देना, जाओ नीचे जाओ, किसी भक्त का सहारा लो, भक्त ने सहारा दिया तो बचे, नहीं दिया तो गए। तो नीचे आए इतने बड़े देवेंद्र, सभी देवताओं के राजा, वज्र है उनके पास, शक्ति है उनके पास, सब देवताओं को नियंत्रण करते हैं। तो वो एक सीधी सादी गाय के पास में आए, सुरभी गाय के पास, और शरण लिया उसकी। सोचो जब घमंड होता है ना तो बाद में नाक घिसना पड़ता है, तो घमंड करना ही ऐसा नहीं, क्योंकि तो वो उसका एंड ऐसा ही होता है, कोई भी घमंड होता है ना एंड में नाक घिसने में उसका अंत होता है, और नम्र रहेंगे तो फिर वो नाक घिसने की जरूरत क्या है, नाक बनाए रखो अपने अच्छी तरह, नम्रता जो है ना फिर नाक को बनाए रखता है। अभी देखो आप सोचो कि गाय ने शरण लिया, गाय के शरण लिया उन्होंने, तो अगर आप गाय होते समझो तो क्या बोलते उसको, अभी आए हो हमारा नाश करने के लिए आए थे, हाँ पूरा गांव के साथ, गायों के साथ, सबके साथ, हमारा परिवार, हमारा विद्वासीगण, हमारे मालिक, सबको नष्ट करने आए थे, चले जाओ यहां से, आए बड़े चरण मांगने के लिए, तब नहीं सोचा था हमारी जान लेने के पहले, अभी खुद की जान पर बनी तो आ गए, चला उठो नहीं यार, ऐसे आप बोल सकते हैं ना, आपको अधिकार है क्योंकि आपके जीवन पर जान लेवा हमला किया उसने। लेकिन सुरभि ने ऐसा एक भी डायलॉग नहीं बोला जो मैंने बोला, उनके नाम पे। सुरभि ने तुरंत उनको शरण ले लिया। क्या कारण है उसका? देवकी ने भी कंस को तुरंत माफ कर दिया। छह बालकों को पटक पटक कर पीस पीस कर मारा था, खून से लथपथ होकर पूरे कैद खाने में से दाग थे दीवार पर, एक दो तीन चार पांच छह रोज दिखती थी छह बालकों का खून उसी कारागृह में। तभी जब कंस आया माफी मांगने के लिए, तुरंत माफी कर दिया, तो गाली नहीं दिया। कारण क्या उसका? दोनों के कारण एक ही है, क्योंकि उसके कुछ समय पहले कृष्ण का दर्शन हुआ था उनको, सारे दुख भरे जो इंप्रेशन थे ना सब नष्ट हो गए। कृष्ण तो आनंद का सागर है ना, कृष्ण का संपर्क होते ही सारे दुख भरे जितने निवेदन होते हैं ना वो सब नष्ट हो जाते हैं। व्हाटएवर इज एक्यूमुलेटेड इन योर हार्ट एज पेनफुल एक्सपीरियंस, कृष्ण की अनुभूति साक्षात्कार होने पर सब नष्ट हो जाता है। केवल नष्ट होता नहीं, आनंद का सागर उमड़ता है उसके अंदर, उसकी याद भी रहती नहीं है कि वो क्या दुख का भरा अनुभव था। तो इन्होंने माफ कैसे तुरंत किया? सात दिन तक श्रीराज का दर्शन किया था उन्होंने, ऐसे खड़े थे भगवान, ना भूख ना प्यास, कोई परेशानी नहीं, न नींद का वेग, न कोई लघु शंका बड़ी शंका का वेग, न भूख प्यास का, न क्रोध, न किसी की याद ही नहीं, शरीर का ही होश नहीं, आत्मा से केवल दर्शन ग्रहण कर रहे हैं, पी रहे हैं दर्शन को, पी रहे हैं। अगर 700 दिन भी खड़े रहते ना तो भी ऐसे ही देखते रहते उनके, इतना आनंद था। वैसे तो सौंदर्य की मूर्ति है वो, सर्वश्रेष्ठ सौंदर्य की मूर्ति है, उसमें मुरली बजा रहे हैं, उसमें एडिशनल ब्यूटी गोवर्धन की पकड़ी रहे हैं, है ना, सृष्टि मतलब ये ऑलरेडी सुंदर, उसके ऊपर और मुरली और उसके ऊपर गोवर्धन धारण, ये दर्शन तो सात दिन ही हुआ ब्रज में, बीच में कभी हुआ क्या? एक बार दोबारा उठा के देखो, ऐसा नहीं हुआ बीच में, वो सात दिन में ही दर्शन हुआ। अद्भुत दर्शन था वो, अनोखा दर्शन था, दुर्लभ दर्शन था। सब ब्रजवासियों ने सब कुछ खोकर अपना वो नेत्रों के माध्यम से, नेत्रों के प्याले से वो अमृत भर भर के पिया। इतना आनंद हुआ कि वो जब इंद्र आए तो याद ही नहीं रहा इंद्र ने क्या किया और क्यों किया। ठीक है, आया शरण में तो माफ कर दिया, ऊपर से भगवान के पास ले गए जिसके लिए कोई चांस नहीं था भगवान की कृपा प्राप्त करने का। भगवान के भक्तों का अपराध किया, भगवान के भक्तों को नष्ट करने का प्रयास किया, विध्वंस करने का प्रयास किया, कैसे माफी हो सकती है? एक ही रास्ता था, अगर कोई उसमें से कोई भक्त आकर सिफारिश करेगा भाई इसको देखो जरा, कोई चांस था। तो सुरभि लेकर गई देवेंद्र को भगवान के पास, तब पहली बार भगवान ने उनकी ओर मुड़ के देखा और थोड़ा सा चेतावनी भी दिया, अगली बार गलती मत करना ऐसी। सब लोग गलती करते हैं, पूरे कुंड है सुरभि कुंड, वहां पर इंद्र ने पश्चाताप किया सुरभि के सामने, तो वो कुंड पर पश्चाताप करने से हमारे गुनाहों की माफी हो जाती है। तो कितना भी बड़ा होंगे ना हम, उतना बड़ा घमंड होता है, और जितना बड़ा घमंड होता है ना वो टूटने पर बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो बिगर द ईगो द बिगर द पेन व्हेन इट ब्रेक्स, दिस इज द रूल। जितना गुब्बारा फुगाओगे ना उधर तब फूटेगा तो बहुत ज्यादा आवाज आएगा उसका, छोटा गुब्बारा फूटेगा तो ज्यादा टुक, बड़ा फूटेगा तो ठॉप ऐसा आवाज आएगा, और बड़ा बड़ा रहेगा तो स्पोर्ट जैसा आवाज आएगा। तो आपको कितना आवाज करना है आपके ऊपर डिपेंड है, आप तय करो। छोटे से ही मान लो, जितना छोटा है तब तक क्रश कर लो उसको, है ना। बड़े बड़े अखरोट के दाने तोड़ने के लिए बहुत कष्ट होता है, थोड़ा थोड़ा तोड़ लो उसको, फिनिश कर लो उसको, कहां तक ले जाएंगे उसको। जितना बड़ा फुगाओगे उतना आगे तक फूटना ही है उसको। कोई जीवन के अंतिम समय सारे गुब्बारे फूट जाते हैं, सारे बड़े बड़े जितना जमा करके रखे ना सब फूट जाते हैं, कोई बचता नहीं हमारे साथ। आत्मा के साथ जो इकट्ठा किया है ना वही साथ जाता है। तो ये गिरिराज की संक्षेप में कहानी आपको बताई। बहुत उसके अंदर बोध है, बहुत अंदर आनंद है उसके, ब्रज की सबसे बड़ी आनंद की लीला है वो। भगवान ने कहा ना टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन, भयंकर घनघोर जानलेवा वर्षा हो ही रही है, सब लोग इकट्ठा हो ही गए हैं, लेट्स हैव फन। तो इसका और भी एक अर्थ यह है कि अगर आप भगवान के साथ होंगे ना तो बुरी से बुरी चीज भी अच्छी चीज में उसका रूपांतर हो जाता है। द वर्स्ट थिंग इन लाइफ टर्न्स आउट टू बी गुड फॉर दोज हू लव गॉड। आपके जीवन में भयंकर से भयंकर घटना होगी अगर आप भगवान के साथ होंगे भगवान की स्तुति होगी, भगवान के शरण में होंगे, तो बुरी से बुरी भयंकर चीज आपके लिए अनुकूल आनंद में बन जाएगी, उसको भगवान परिवर्तन कर देते हैं। तो डोंट वरी, जब दुख होगा संकट होगा भगवान का सहारा लो, वो चमत्कारिक दृष्टि से आपके भयंकर दुख को आपके अनुकूल घटना में रूपांतरित करेंगे। गोवर्धन पर घनघोर वर्षा हो रही है, उसको तो गुदगुदी हो रही है आनंद की, देखो कैसा है, प्रमाण है ये शास्त्र में। भगवान एक को उंगली में शक्ति दे रहे हैं, एक को लोगों को दर्शन में शक्ति दे रहे हैं, हर प्रकार से, इधर तो चक्र को घूमने की सेवा दे रहे हैं, सबको आनंद दे रहे हो। एक ऐसे विपरीत घटना में सोचो, हु कैन कन्वर्ट अ मोस्ट अनफेवरेबल सिचुएशन इनटू आनंदमय सिचुएशन, ओनली कृष्णा कैन डू इट। तो इसका सहारा लो, सब लोगों ने सहारा लिया। अरे उन्होंने भी प्रश्न नहीं किया था, अरे अभी कहाँ ले जाओगे हमको, तो क्या करने वाले हो, चलो मेरे साथ बोल रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तुमने तो उनका पूजा कैंसिल किया और इतना सब तुम्हारे वजह से हुआ, अभी तुम्हारा नहीं सुनेंगे हम, चलो जाओ यहाँ से, उसे कृष्ण को नहीं बोला। अरे इतना सब होने पर भी एक्चुअली वही कारण थे उससे ना, उन्होंने अगर पूजा बंद नहीं करवाते तो कुछ नहीं होता, उन्होंने बंद करवाई इसलिए इतना बड़ा आतंक हो गया, लेकिन फिर भी वो उनके पास ही गए। मैंने कहा चलो मेरे साथ, चले गए। फिर पूछा क्या करोगे, मैं पर्वत को उठाऊंगा। आपका नाम क्या, पुष्पांजलि कितनी उम्र है तुम्हारी, 12। आपकी माता कहाँ है, पुष्पांजलि माता को बोलेगी मैं ना अभी गोवर्धन को उठाऊंगी, वर्षा हमारी ना छतरी बनाऊंगी उसकी, तो बोलेगी छोटी मेरी पगली बेटी, ऐसे बोलेंगे ना आप लोग, छोटा सा बालक क्या करेगा। तो बालक बोले सब लोग उनको, अरे कैसे मान ले हम आपको पर्वत को उठाएंगे, तो मैंने ना क्या किया, एक पेड़ था कदम का बड़ा एकदम विशाल, आज के ऐसा नहीं बहुत विशाल, उसको इतने से बालक ने उसको उखाड़ा और पेड़ को उखाड़ के ना ऐसा निचोड़ दिया उसको, जो कपड़ा निचोड़ते ना हम लोग धोती कुर्ता निचोड़ दिया पूरा ऐसे उसको, तो सब बाल बालों को विश्वास हुआ कि भाई ये उठाएगा। वो पेड़ अभी भी उधर है, प्रूफ है वो कि ये सत्य घटना है, कोई बनाई बनी बनाई कल्पना घटना नहीं है। उसको कहते हैं ऐठा कदम, जिसको भगवान ने ऐठ दिया है, उसको लोगों ने वार्निश करके एक शोकेस में रखा है, अभी तो उसका तो जीवन समाप्त हो गया ना, लेकिन वो पेड़ जो आप देखेंगे ना आपको समझ में आएगा कि वो ऐसा एक्चुअली ट्विस्ट किया हुआ है पूरा। उसके बाद भगवान गुफा में गए, उन्होंने गोवर्धन को उठाया। भगवान भी बता रहे हैं तो बड़ा कार्य हो करना होगा ना, पहले झुकना होगा फिर बड़ा कार्य कर सकते हैं। तो भगवान पहले जमीन के अंदर गए और झुक कर उसको उठाया, फिर हाथ में खड़ा। तो महान कार्य जो है अहंकार में नहीं होता है, महान कार्य जो है वो नम्रता से होता है। तो जितने नम्र होंगे ना आप उतना महान कार्य कर सकते हैं। हमारे संगीत में भी ऐसा ही है, आपका सा जो है ना जितना मधुर सप्तक में रहेगा ना उतना आप तार सप्तक में आवाज खींच सकते हो। आपका सा अगर मध्य सप्तक में आ गया ना तो आपका आवाज लिमिटेड हो जाएगा, तो जितना नीचे जाओगे आप ना सा लेकर उतना ऊपर उसको उठा सकते हो, इसे जरूरी। बहुत सारी शिक्षाएं हैं इस लीला में। एनीवे तो गोवर्धन के इर्द गिर्द भगवान ने वादा किया था गोवर्धन को कि हमारी अंतरंग से अंतरंग लीला आपके इर्द गिर्द करेंगे, गुफाओं में अंदर में क्या नहीं है गोवर्धन में, अभी तो सब नष्ट हो गया है, दिखता नहीं, झरने थे, तालाब था, नदियां थी, घाट था, बहुत सुंदर पेड़ फूल, हर कंदर अंदर बैठने के लिए गुफाएं, बैठने की जगह, वन बगीचा, वन क्या चाहिए आपको, जैसे प्रकार का चाहिए वैसे हर प्रकार के पवित्र वृक्ष हैं। जैसे यहाँ पर कमाल का वृक्ष खड़ा है, कृष्ण का स्वरूप है ये, ऐसे अनंत प्रकार के पवित्र पेड़ जीवन के लिए क्या क्या आवश्यक है सब वहां पर उपस्थित है। जैसे पुलस्त मुनि उसको लेकर आए, देखो काशी में रखूंगा उसको, भजन भी अच्छा होगा। सब लोगों को विनती है कि कथा सुनते समय जप नहीं करना है आपको, केवल कथा सुनना है, हाँ तो जप करने समय जप करना है, सब बातें नहीं करनी है। तो ये गोवर्धन बहुत पवित्र क्षेत्र है, जैसे वृंदावन धाम के अंदर का एक और उत्कट क्षेत्र है, उसके अंदर एक क्षेत्र है और है राधा कुंड और श्याम कुंड। हमारे रूप गोस्वामी बताते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में सर्वोच्च तीर्थ स्थान जो है वो राधा कुंड श्याम कुंड। तो अभी समय बहुत कम है, लेकिन राधा कुंड के आप किनारे बैठे हो, राधा कुंड के किनारे में कितने क्षण बैठ रहे हो, कितने मिनट बैठ रहे हो, कितना घंटा बैठ रहे हो, ये राधा कुंड निवास है आपका। उस आप राधा कुंड पे निवास कर रहे हो। राधा कुंड निवास ये भक्ति के जीवन का अंतिम लक्ष्य है। एक शरीर से और एक मन से यहाँ से जाएंगे तो भी राधा कुंड के किनारे पे आप मन मग्न रह सकते हो। राधा कुंड निवास भक्ति जीवन का अंतिम चरण है, अल्टीमेट अचीवमेंट जो आपको ऑलरेडी प्राप्त हो चुकी है। आप बैठे हो यहाँ पर, खाली वो उसका महात्म्य और महिमा आपको पता चलेगा तो और लाभ होगा आपको। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि व्हाट इज द ग्लोरी ऑफ दिस प्लेस। तो शाम को एक दिन भगवान मुरली बजाकर गोपियों को रास रचाने के लिए इस वन में बुला रहे थे। तब वह राधा कुंड शाम को नहीं था, अरिष्ट वन नाम का था, बाद में भी अरिष्ट नाम पड़ा उसका। एनीवेज तो इस जगह पर इस वन में भगवान मुरली बजाकर संध्या के समय गोपियों को बुला रहे हैं। अचानक वो मुरली की आवाज समाप्त होते ही भयंकर ऐसे आवाज आई, जैसे तूफान आता हो या भूकंप आता हो या ऐसे कोई भयंकर घटना होती हो। तो अरिष्टासुर ने प्रवेश किया कंस के आदेश के अनुसार, और इतना बड़ा बैल का रूप था उसका कि उसकी पूंछ आकाश में बादलों को मंडरा रही थी। इधर उधर ना उसका वो शिंड हम उसके वो बादल मंडरा रहे थे, सोचते कि ये बादल वो पहाड़ है, सोचते बादल घूम रहे थे उसके आसपास। हर एक पैर के साथ भूकंप हो रहा था, चार पैर से आ रहा था वो, चार चार जगह पर धाड़ 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 ऐसे, और जमीन के अंदर का पानी का स्रोत आकाश में उड़ रहा था। उसकी सांस निकल रही थी ना, वो तूफान की तरह पेड़ों को गिरा रही थी, हरिकेन। और इतना भयंकर, मतलब एक साथ में कितने आतंक हो रहे हैं, भूकंप भी हो रहा है, तूफान भी आ रहा है, और यहाँ से बादल हवा हो रहे हैं, घनघोर आवाज भी हो रही है, गर्जना भी हो रही है, कितनी भयंकर चीज है। हमारे आतंकवाद में क्या होता है कि खाली गोली चलती है, बम फटता है, एक बार डॉग फिर हो गया, फिर कंटिन्यूस है, फिर जमीन फट रही है, किधर फवारे उड़ रहे, किधर आकाश में से क्या, एक साथ में कई गोपियों का गर्भपात हो गया। इसके अंदर इतनी भयंकर डरावनी स्थिति को उत्पन्न किया उसने, केवल आतंक के नहीं, डर फैलाने के लिए, तो क्रिएट फियर। तो कृष्ण के सामने आ गया। भागवत में उसका बहुत लंबा अच्छा वर्णन दिया है, गर्ग संहिता में भी बहुत घनघोर युद्ध हुआ उनके सामने दोनों का। भगवान ने उसको बहुत अत्ता प्रहार किया, पूंछ को उठाया, गोल गोल घुमाया, पटक दिया, फिर उठाया, फिर पटक दिया, फिर सिंह उखाड़े उसके उसके पेट में और घुसा दिए उसको। आखिर में उसी को जख्मी अरिष्टासुर को उठाकर पटक दिया। कितना आसान होता है सुनने के लिए, लेकिन अरिष्टासुर कौन था, इतना भयंकर राक्षस था, बहुत भयंकर राक्षस था। इतनी सिद्धियां थी उसके पास, जिसके कदम रखने से जमीन के अंदर का स्रोत निकलता होगा तो कितना भयंकर होगा। हम खाली सुन रहे हैं कि कृष्ण उसको पीट रहे हैं, इट्स लाइक अ चाइल्डिश स्टोरी, नहीं। लेकिन कृष्ण भगवान के अंदर वो एकदम प्रेम से, कोई शस्त्र वस्त्र नहीं, ऐसे ही मार दिया उसको। तो मार के बाद, मारने के बाद में घोड़े शान से आए गोपियों के सामने, गोपियां बोले वाह वाह धन्यवाद, जय हो, जय थी, जय थी। ऐसा नहीं हुआ, बोले हमने आपसे बात नहीं करेंगे। मैंने क्या हुआ, अभी इतना बढ़िया, मैंने मेहनत की आपके लिए, सबको आतंक से बचाया, मैंने आपने बैल का वध किया, बैल धर्म का प्रतीक है, धर्म का प्रतीक को आपने नष्ट कर दिया। नहीं, वो राक्षस था, आप जानते हैं ना किसा आया था वो, हम नहीं जानते, हम जानते हैं इतना केवल हमारा धर्म कहता है कि बैल हमारे धर्म पिता है, हम आपसे बात नहीं करेंगे। मैंने कहा ना कल आपको कि गोपियां जब कहती है हम आपसे बात नहीं करेंगे, ये सबसे बड़ी धमकी है कृष्ण के लिए। जो मूर्तिमान भय भी उनसे भयभीत है, फिर भी जब गोपियां कहती है हम बात नहीं करेंगे तो डर जाते हो। प्रेम का माधुर्य का परिणाम है ये। चलो ठीक है, अपराध हो गया हमारा, करना क्या है बताइए, बिना बात के आपसे हम रह नहीं सकते, क्योंकि आप सभी तीर्थों पे जाकर आपको स्नान करना होगा, जितने भी ब्रह्मांड में तीर्थ हैं। फिर वही कहते हैं, जब मैंने कहा ना अवस्थासुर का वध हुआ था तो क्या कहा था, तो मैं जाऊंगा अगर, तो आप बोलेंगे आप गए नहीं, तो कैसे फिर वो बाप शालन होगा। जैसे मैं सभी तीर्थों को यही बुलाता हूँ, तो जितने 84,000 तीर्थ थे वो सभी व्यक्ति बनकर वहां पर प्रकट हुए। भगवान ने अरिष्टासुर का पैर का एक गड्ढा था ना जो बनाया हुआ था अरिष्टासुर के पैर से, उसको ही बड़ा करके सभी तीर्थों को वहां प्रवेश दिलाया। सभी जो जल वाले तीर्थ हैं, सरोवर कुंड नदी टाइप के, और जो पर्वत वाले जैसे वन वाले तीर्थ हैं, जो अलग प्रकार के होते हैं तीर्थ, कोई स्थान भी तीर्थ होता है, कोई पर्वत भी तीर्थ होता है, कोई जलाशय भी तीर्थ होता है, कोई समुद्र भी तीर्थ होता है, क्षीर सागर भी तीर्थ होता है, सभी सब धाम तीर्थ वो है, इकट्ठा हो गए वहां पर, और उसको एक सुंदर श्याम कुंड बना दिया उन्होंने, उसका नाम श्याम कुंड हुआ। श्री कृष्ण ने उसमें स्नान किया, सबकी आंखों के सामने सब तीर्थ पर्वत प्रवेश कर गए और सबके आंखों के सामने, राजा रानी की आंखों के सामने सबने स्नान किया और तथा कथित हरिष्टासुर के वध करने का पाप उस जल में छोड़ दिया और शुद्ध हो गए। श्री कृष्ण ने गोपियों को कहा, राजा रानी को, कि आप लोगों ने मेरे साथ हरिष्टासुर का पक्ष लेकर वाद विवाद किया है, यू हैव टेकन साइड ऑफ द डीमन एंड आर्ग्यूड विद मी, तो आपको भी पाप लग गया है, आपने राक्षस का पक्ष लिया है, तो अभी आप भी जब तक शुद्ध नहीं होंगे तब तक आपसे भी बात नहीं करेंगे। तो राधा रानी को बताया बाद में एज अ कोरोलरी क्लॉज, आप हमारा जल का पानी ले सकते हैं शाम कुंड, लेकिन राधा रानी बड़े होशियार है, वो कहते हैं कि तुम्हारे कुंड में अरिष्टासुर को मारने वाला पाप छोड़ दिया तुमने, हम स्नान करेंगे तो हमको लगेगा वो पाप, हम अपना कुंड बनाएंगे, ठीक है बना दो। वो सभी तीर्थ जितने आए थे ना उन सबको इशारा किया, आप ना रुको जाओ मत, थोड़ा रुको फिर आपको और सेवा मिलेगी, रुको जरा। सब लोग ऐसे आकाश में जाके रुक गए, देख रहे लीला, तो यहाँ से वो वहां से लेकर मानसी गंगा तक लाइन लगाई और वहां से पानी निकालकर अपने कंगन से कंगन तोड़े और कंगन से ऐसे छेद बनाया, जमीन के अंदर वाला गड्ढा बनाया और उसमें डालना शुरू किया। कहते हैं 2 घटिका यानी 48 मिनट्स तक उनका ये सेवा चलती रही, लेकिन थोड़ा सा भी पानी भरा नहीं उसके अंदर। अभी देखो शाम के समय पे मुरली बजाई, फिर कुछ समय तो गया हुआ ना मारामारी करने में, तो एक आध घंटा वो उसमें गया, उसके बाद में एक आध घंटा पानी भरने में स्नान करने में गया, उसके बाद में डिस्कशन हुआ, उसके बाद में ये 2 घटिका प्रयास किया, मतलब समझो रात के 9-10 बज गए होंगे, 10:30 बज गए होंगे, फिर प्रयास कर रहे हैं उनके हाथ में पसीना आ रहा है। तो कृष्ण कहते हैं इतना क्यों मेहनत कर रहे, क्यों मेहनत कर रहे, तो खड़े हो उनको सेवा दो। फिर नजरों से चार लोगों को इशारा किया, इंचार्ज लोगों को आ जाए, और राधा रानी के पास आए, उनके चरणों में गिरे। राधा रानी इतने कष्ट की बोल रहे हैं, कपाल प्रदेश पर धर्म बिंदु आ रहे हैं, स्वेद जल प्रकट हो रहा है, प्लीज इतना कष्ट मत करना, सेवा देना। तो परम दयालु राधा रानी फिर कहते हो कि तथास्तु, तो सब लोग उनके गड्ढे में प्रवेश किया उन्होंने और राधा कुंड का निर्माण हुआ। राधा कुंड का निर्माण हुआ, भगवान ने इतने आशीर्वाद दिए, इतने आशीर्वाद दिए, उन्होंने कहा कि ये जो जल है राधा कुंड का, ये जल नहीं है, राधा रानी का द्रव रूप प्रेम और भक्ति है, ये साक्षात द्रव रूप प्रेम और भक्ति है, नॉट वॉटर। जो भी इसमें स्नान करेगा वो राधा रानी जितनी मुझे प्रिय है उतना प्रिय हो जाएगा। नंबर 2, जो भी इसमें स्नान करेगा राधा रानी के मन में मेरे लिए कितनी भक्ति और प्रेम है वो उसको प्राप्त करेगा, और ये संपूर्ण ब्रह्मांड का सर्वोच्च तीर्थ स्थान रहेगा, अंतिम गंतव्य स्थान रहेगा, अंतिम प्रेम और भक्ति प्राप्त करने का स्थान रहेगा, सर्वोच्च। ऐसा भगवान ने बहुत सारे वरदान दे दिए। और फिर कृष्ण ने कहा उनसे, अरे अभी आपके कुंड को इतना महात्म्य प्राप्त हो गया है तो मेरे कुंड में कौन स्नान करेगा, क्योंकि आपने तो कहा उसने तो हरिष्टासुर का वध किया, वो पाप छुपा हुआ है। उन्होंने कहा मैं खुद आके स्नान करूंगी। राधा रानी ने जाकर स्नान किया और उन्होंने कहा कि 100 बार भी तुम हरिष्टासुर का वध करोगे तो 100 बार मैं आकर यहाँ पर स्नान करूंगी, इतना ये शाम कुंड मुझे प्रिय होगा। और फिर 3 का अलग अलग घटनाएं हुई। एक घटना ऐसी हुई, जब ये बातचीत हुई कि तो वो कौन स्नान करेगा वहां पर, तो राधा रानी ने कंगन तोड़ा और बीच के ब्रिज को ऐसे मारा जो दोनों के बीच में था, वो टूट गया और दोनों पानी एक हो गए। एक घटना है। दूसरी घटना यह है कि दोनों ने जब अपने भाव से वहां पर स्नान किया, राजा रानी ने यहाँ से और उसने वहां किया, तो भाव विभोरता से वो जल ऐसे भरती आई उसको, तो दोनों एक रूप हो गए। तीसरा बताया गया है कि जब राधा कुंड बन रहा था तो कृष्ण ने नीचे से छेद किया और शाम कुंड का जल छोड़ दिया, तो ऊपर से भी मिलन है, नीचे से भी मिलन है, और जानबूझ के भी तोड़कर भी मिलन है, क्योंकि राधा कृष्ण एक दूसरे से कभी अलग हो ही सकते नहीं। शाम कुंड श्याम स्वरूप है, राधा कुंड राधा स्वरूप है, तो कुंड स्वरूप भी होंगे तो भी मिलन तो होगा ही ना। इस तरह से राधा कुंड श्याम कुंड का निर्माण है। तो हमारे लिए भी क्या करना है, हमारे लिए करना, हम राधा कुंड के किनारे आ गए हैं तो यहाँ पर बिल्कुल बहुत अति अति गंभीरता से हमको चलना है। मौन रखेंगे तो अच्छा है, पर मौन में भगवान का नाम ही केवल लेना है, बाकी यहाँ वहां की कुछ बातें नहीं करनी है, हमको केवल एक परिक्रमा करना है। परिक्रमा करके हम आगे के स्थान पे चले जाएंगे। लेकिन परिक्रमा में अनंत स्थान है, जैसे मैंने बताया ना आपको, जितने गौड़ीय संप्रदाय के और अलग संप्रदाय के मंदिर है, सारे मंदिरों का प्रतिभू मंदिर राधा कुंड श्याम कुंड के किनारे है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको लुप्त होने के बाद में 525 साल पहले यहाँ पर प्रकट हुए भगवान चैतन्य महाप्रभु, और अपने ध्यान में उन्होंने तमाल वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान में दर्शन किया, फिर सामने जाकर छोटे छोटे डबके अंदर कूद लगाई, छानी छलांग लगाई, और रघुनाथ दास गोस्वामी को बताया कि इसका जीर्णोद्धार करो। फिर आज का आपके सामने दर्शन जो है ना, वो रघुनाथ दास गोस्वामी ने जीर्णोद्धार किया हुआ राधा कुंड श्याम कुंड का दर्शन आपके लिए उपलब्ध है। वो होता है ना लुप्त होते हैं प्रकट होते हैं, वैसे लुप्त राधा कुंड श्याम कुंड को चैतन्य महाप्रभु ने आकर स्वयं प्रकट कराया सर्वोच्च स्थान को, और अपने प्रिय भक्त से उसका जीर्णोद्धार करवाया। इसके अनंत कथाएं हैं, यहाँ पर आप 3 दिन तक लगातार आ सकते हो, इतने स्थान हैं और इतनी कथाएं हैं। फिर हमारे पास जो समय है, इतने भी हम कम से कम समय में अधिक से अधिक कृपा बटोरने का प्रयास करेंगे। इसका एक मार्ग है साइलेंस, नो टॉक्स। उसका मार्ग है भगवान का निरंतर जप करते हुए, एकाग्र होते हुए, परिक्रमा करते हुए, राइट साइड में राधा कुंड श्याम कुंड का दर्शन करते करते निहारते हुए, प्रेम से उसको नजरों में भरते हुए आपको परिक्रमा पूर्ण करनी है। शुरुआत में वहां पर हम लोग जो मंदिर आए तो कुंडेश्वर महादेव थे, वो इन दो कुंडों की रक्षा करते हैं महादेव जी। बहुत सारे संतों का यहाँ पर भजन स्थली है, बहुत लोगों का समाधि है। चैतन्य चरितामृत जो ग्रंथ है, श्री चैतन्य महाप्रभु का जो जीवन चरित्र है, उसका लेखन राधा कुंड किनारे किया गया था कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा। रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने जीवन के अंतिम चरण में हर रोज चैतन्य महाप्रभु के जीवन का उत्तरार्ध का वर्णन किया था राधा कुंड के किनारे। सब संतगण बैठे थे सुनने के लिए, कृष्णदास कविराज भी थे उसके अंदर, उन्होंने नोट्स बनवाए और वो सब नोट्स का इंतजाम योग चैतन्य चरितामृत के उत्तरार्ध अंग को निर्माण करने में किया। नित्यानंद प्रभु की पत्नी जो जानवा देवी है, वो जानवा देवी भी आई थी यहाँ पर, और रघुनाथ दास गोस्वामी के प्रवचन में बैठकर उन्होंने भी गौरांग महाप्रभु की लीलाओं का श्रवण किया, उनकी भी बैठक यहाँ पर है। मदन मोहन जी, गोविंद जी, गोपीनाथ जी और सभी भगवान को प्रतिभू मंदिर यहाँ पर है, क्योंकि वो जयपुर जाने के सब लोग यहाँ रुके थे भगवान, सभी मंदिर यहाँ पर है। प्रभुपाद जी के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती और उनके पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर, उनका भी खुद का निजी घर है यहाँ पर, जहाँ पर वो रहकर भजन करते थे। माधवेंद्रपुरी की बैठक है यहाँ पर, जो कल्प वृक्ष है, वैकुंठ के कल्प वृक्ष है। गिवा मंदिर है गोवर्धन का, और अद्भुत लीलाएं हैं यहाँ पर। रोज श्याम कुंड के किनारे पे सुबह 11:48 के शुभ मुहूर्त पर राजा रानी अपने गिने चुने सखियों के साथ आकर नियम से श्याम कुंड में स्नान करती है। कृपा है, अनंत कृपा है। आपको जल में जाकर आचमन करना है, प्रणाम करना है पहले, फिर 3 बूंदे सर पे छिड़कना है और 1 बूंद मुंह पे रखना है, प्रणाम करना है और कृपा याचना करनी है, केवल भिक्षा मांगनी है कि हमें राधा कृष्ण के प्रति भक्ति और प्रेम चाहिए, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। जो भी स्पर्श करेगा, भगवान ने कहा है कि वो परम भक्ति को प्राप्त करेगा। जो राधा रानी के पास है, जो स्रोत है भक्ति का, वो भक्ति जो उनके पास है वो आपको प्राप्त हो जाएगी, ऐसे कृष्ण भगवान ने वरदान दिया है, तो आप लोग उसका लाभ लो। एकाग्र होकर प्रार्थना करो, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या डिग्री मेरी है, मेरी क्या स्थिति है, सब भूल जाओ, एक याचक बनकर पहुंचो वहां पर, और गंभीरता से हृदय से रो रो कर प्रार्थना करके आचमन करो। ये क्षण जो आपके जीवन का है ना, ये सर्वोच्च भाग्यशाली क्षण है जीवन के आपका। इसमें इतनी कृपा मिलेगी कि जीवन के आने वाले अनंत समस्याओं का सामना करने की शक्ति मिलेगी, हंसते हंसते आनंदमय तरीके से हर एक जीवन के हर एक भयंकर समस्या को हंसते हंसते सामना करने की और आनंद बनाने की शक्ति इस पुण्य क्षणों में आपको प्राप्त होगी। ऐसी पूंजी यहाँ पर उपलब्ध है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। तो समय के अभाव से हम लोग कहीं पर रुककर कथा नहीं करेंगे, केवल चलेंगे, बस ओनली चलेंगे, हा? और चलकर तो परिक्रमा पूरी हो जाएगी, तो उसके आगे हम लोग कुसुम सरोवर जाएंगे। कुसुम सरोवर भी बहुत सुंदर स्थान है, वहां पर भी हमारा खुद का मंदिर है, हम लोग वहां बैठेंगे प्रांगण में और वहां कथा करेंगे। हरे कृष्ण।